نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، سورة ياسين کے بارے میں جو سوال کیا تھا اس کا جواب دینا یاد نہ رہا، اس پر معذرت سے پہلے قبول فرمائیے. اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ جو فرمایا کہ ان جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، یہ اور اس کے بعد والی آیت بھی، وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون وسواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. تو ان آیتوں میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے بنیادی طور پر، تو وہ یوں کہ ابو جہل قبیلہ بنو مخزوم سے تھا اور اس کے ساتھ ولید بن مغیرہ اور کچھ اور لوگوں نے یہ طے کیا اور قسم اٹھائی کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر، نعوذ باللہ، کچھ لیں گے اس پتھر سے اگر ان کو حالت نماز میں پائیں گے. چنانچہ باری باری یہ لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے کوشش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر قرآن کی تلاوت فرماتے رہے تو یہ آپ کی آواز تو سنتے، لیکن جب آواز کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے تو آواز پیچھے سے آنے لگتی، کبھی دائیں بائیں سے آنے لگتی. مطلب یہ کہ وہ آپ کو دیکھ نہ پائے. آپ کی آواز سن سکتے تھے لیکن آپ کو دیکھ نہ پاتے تھے، تو پریشان ہو کر واپس آ جاتے تھے. پھر دوسرا گیا، اس نے بھی یہی کیا. تو ایک تو اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو ان کی گردنوں میں، اغلال، غل، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ کو کسی کی گردن پر باندھ دیا جائے، یعنی اس طرح سے دونوں طرف ایسا پیچھے کر کے جب ٹائٹ باندھ دیا جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی تک، اذقان کہتے ہیں اس کو، اوپر اگر ہاتھ باندھ دیا جائے تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ کیا ہوگا. گردن پر اگر کسی کے ہاتھ کھینچ کے پیچھے کی طرف ٹائٹ کر دیا جائے تو اب اس کا سر اکڑا رہ جائے گا اوپر کی طرف، اور نگاہ اگر وہ جھکا کے دیکھنا بھی چاہے تو نیچے آس پاس کوئی چیز ہوگی تو اس کو نظر نہیں آئے گی. تو ایک تو اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ گویا ان کو نظر ہی نہ آئے. دوسری طرف اس میں تو یہ تو اس کی ایک یعنی وجہ نزول ہوئی، جسے شان نزول کہتے ہیں. اور ایک دوسرا مفہوم اس کا جو ہے وہ تمثیلی ہے، وہ یہ کہ جب انسان میں تکبر اور نخوت یعنی اپنی بڑائی اور اس طرح کی بیماریاں آ جائیں تو پھر اس کو حق سامنے ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آتا. اور یہی حال ہوا تھا ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کا. چنانچہ ابتدائی زمانے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تلاوت فرمایا کرتے تھے تو حجرہ مبارک کے باہر ایک رات ابو جہل اور اس کے کچھ ساتھی الگ الگ سے چھپ کے قرآن سننے پہنچ گئے. جب فجر کا وقت آیا تو ان کی آنکھ کھلی کہ وہ تہجد کے وقت پہ تلاوت ہو رہی تھی، فجر کی نماز سے پہلے تہجد کے وقت میں. تو وہ تلاوت میں اتنا مگن ہو گئے کہ ان کو یہ اندازہ ہی نہ ہوا کہ فجر کا وقت ہو گیا. پھر جب سورج کی کچھ روشنی ہوئی تب واپس پلٹے، تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور بڑا ملامت کیا کہ تم لوگوں کو منع کرتے پھرتے اور خود جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے پھرتے ہو، ایسا کرو گے تو لوگ سارے بالکل انہیں کے راستے پہ چل پڑیں گے، تو خبردار جو آئندہ کسی نے کیا. تو اس رات پھر یہ سوچ کر کہ دوبارہ کوئی اور تو آئے گا نہیں، تینوں یہ سوچ کر اپنے اپنے گھروں سے نکلے اور پھر وہ قرآن اسی طرح انہوں نے اس رات میں سنا. اور تیسری رات بھی یہی ہوا اور ایک دوسرے کو ملامت کی. پھر کہا کہ نہیں، اب ہم اسی طرح سے کرتے رہے یہ سوچ کے کہ دوسرا نہیں آئے گا تو میں خالی چلا جاتا ہوں تاکہ اس تلاوت کا لطف لے لوں، کیونکہ اس کلام میں بڑی شیرینی اور بڑی مٹھاس اور حلاوت ہے، تو ایسے اب کام نہیں چلے گا، اب کوئی نہیں آئے گا. تو پھر انہوں نے آنا جانا چھوڑ دیا. کسی اور موقع پر ابو جہل سے کسی نے پوچھا تو کہا کہ بات یہ ہے کہ ہے تو یہ نبی جس کا یہ دعویٰ کرتا ہے، کیونکہ جھوٹ نہیں بولتا، ہم نے اس کو زمانے سے دیکھا ہوا. लेकिन मसला ये है कि हमारे और इनके कबीले के दरमियान शुरू से एक मुसाबकत रही है, कंपटीशन रहा है। इनके यहाँ माल और औलाद है, हमारे यहाँ माल और औलाद है, इनके यहाँ ऊँचे ऊँचे नसब और नाम है। हमारा भी ख़ानदानी नसब बहुत ऊँचा है, हमारे भी बड़े नाम हैं, हमारे में बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े ओहदे हैं, इनके यहाँ भी ये सब है, बनी हाशिम। और इसी तरीके से हम बनी मखज़ूम, ये दोनों कुरैश के कबीले हैं। लेकिन अब ये कहते हैं कि हमारे यहाँ एक नबी हैं, तो हम वो कहाँ से लेकर आए? सिवाय इसके और कोई चारा नहीं है कि हम इनका रद्द करें, इनकार करें, वरना गोया हमने अपनी शिकस्त कबूल की या हम पीछे हो गए। तो उस वक्त उसको ये एहसास था कि हक यहाँ है, और तकब्बुर की वजह से उसने उसका रद्द किया। और इसका नतीजा ये निकला कि तब तकब्बुर की वजह से बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँची कि बदर के मौके पर, जो हिजरत के दूसरे साल हुआ यानी 2 हिजरी में पहला मारका, इसमें अबू जहल सरदार था मुशरिकीन की तरफ से, तो उसने काबे की चादरें दी, गिलाफ और उसके दरवाजे को पकड़ कर, मुल्तजम वगैरह से चिमट कर, अल्लाह ताला से दुआ की, वहाँ खड़े होकर कहा कि ए रब्बे काबा, ऐ परवरदिगार, तू जानता है कि हक पर कौन है और बातिल पर कौन, या अल्लाह जो आज हक पर है उसको फतह अता फरमाइयो, और जो बातिल पर हो उसको तबाह बर्बाद कर दे। तो खुद गोया अपने लिए बददुआ करके वहाँ से निकला। तकब्बुर की वजह से ये बात जो वो जानता था पहले इब्तिदाए इस्लाम में और ख़ुद कहता था, तकब्बुर इतना बढ़ा कि वो उस बात से भी अंधा हो गया। गोया उसको करीब की चीज़, जानती बूझती चीज़ भी उससे पहचानी न गई, और तकब्बुर यही करता है। चुनाचे उनके आगे पीछे गोया दीवार, और फिर वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न देख सके, हक की बात का इनकार किया। तो वाक़या तो उसी तरफ इशारा करता है, लेकिन चूंकि क़ुरान के बारे में ये उसूल है कि अल इबरतु लिउमूम लफ्ज़ ला बिसुब अल इबरतु बिउमूम लफ्ज़ ला बिखुसूस सबब, कि इबरत जो है यानी सबक जो लिया जाता है किसी भी वाक़े से, वो लफ्ज़ के आम होने पर लिया जाता है, उनकी बातों में जो अमूमियत होती है उससे लिया जाता है मफहूम, बजाय उस ख़ास वाक़े की वजह से जो सबब उसका होता है। तो वाक़े की वजह से तो नाजिल हुआ, लेकिन बकिया हिस्सा जो उसका है या पूरी जो आयत के पीछे तासुर है, वो असल में अहम है। और वो क्या कि तकब्बुर और बड़ाई अपने बारे में होने से इंसान का हाल ऐसा ही हो जाता है कि गोया सामने नज़र आने वाली चीज़ भी नज़र नहीं आती, हक उसके सामने आता है और वो उसको रद्द कर देता है। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल-किब्रु बतरुल हक व गमतुन नास, किब्र ये है, तकब्बुर ये है कि हक का इनकार किया जाए और लोगों को हकीर समझा जाए। और एक मफहूम इस आयत का मुफस्सिरीन ने इस तरह से भी बयान किया कि गोया इनके इस कब्र की वजह से अल्लाह ताला उनके गलों में तौक ऐसे डाल देते हैं कि एक तो पतला सा पट्टा हो तौक की तरह, एक है इतना चौड़ा पट्टा कि वो पूरी गर्दन को उठा के सीधा ऊपर की तरफ कर दे, जिसकी वजह से थोड़ियों तक हो जाने की वजह से वो आगे देख ही ना सकता हो। अब उसकी नज़र वो जितना भी नीचे कर ले, अपने सीने के सामने अगर कोई चीज़ होगी तो उसको नज़र नहीं आएगी, बिल्कुल गोया सामने भी कोई चीज़ होगी तो नज़र नहीं आएगी। और ये अल्लाह ताला उसके लिए गोया मोहर लगा देते हैं उनके दिलों पे, ख़त्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समईहिम व अला अबसारिहिम, फिर गिशा व पर्दा हो जाता है उनकी आँखों के दरमियान, आँखों के सामने, चुनाचे दिलों पर, आँखों पर और समात वगैरह पर उनकी मोहर लग जाती है। उस मोहर की वजह से वो अपनी गुमराहियों में पड़े रहते हैं। इसीलिए अल्लाह आगे फरमाते हैं कि बराबर है उनके लिए कि ख़्वाब उनको डराएं या न डराएं, ये ईमान लाने वाले में से नहीं, ये ईमान लाने वालों में से हरगिज़ नहीं, ये कबूल नहीं करेंगे, ये नहीं डरेंगे, नई बात मानेंगे। तो लुबे लुबाब ये है कि आयत ख़ास वाक़े के रेफरेंस में तो नाजिल हुई, और उसके बाद वाली भी दो आयतें उसी से मुतालिक हैं, लेकिन उसका उमूम मफहूम जो है वो सबके लिए है, वो यही है कि हक को कबूल करने के लिए जो जो चीज़ें रुकावटें बनती हैं, उनमें सबसे बड़ी रुकावट अपनी बड़ाई, तकब्बुर, मैं कुछ हूँ, मैं ज़्यादा जानता हूँ, मुझे ज़्यादा अंदाज़ा है, फला नहीं कैसे कह दिया कि हमने नहीं पढ़ा हुआ, कि हम नहीं जानते, कि हम जाहिल हैं, हम इन मौलवी से क्यों पूछें, हम उन फिला से क्यों पूछें, हम खुद रिसर्च करेंगे, हम खुद जानते हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं। तो ये बात बढ़ते बढ़ते आदमी को कुफर तक पहुंचाती है और अल्टीमेटली फिर वो दीन से दूर हो जाता है। इसीलिए बहुत से मुसलमान भी दीन से निकल जाते हैं, पहले हदीस का रद्द करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता कुरान का रद्द करते हैं, फिर उससे भी निकल जाते हैं। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए, फिक्र आखरत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमारे अंदर से किब्र की बीमारी को निकाल दे और हर किस्म की बड़ाई का एहसास हमारे अंदर से निकाल दे। हमें अपनी हकीर होने की जो हैसियत है वो हर वक्त मुस्तहज़र रहे, हमारे जहन हमेशा इस बात की तरफ बिल्कुल यकसू रहे कि हम दुनिया में हकीर हैं और कमज़ोर हैं, और अल्लाह की रहमत होगी तो हमारा काम बनेगा वरना नहीं। तो अपनी राय से भी रुजू करना चाहिए, अपने इल्म को बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए, और अपने बारे में ये एहसास होना चाहिए कि हम कम जानते हैं, जितना जानते हैं बस इतना ही। वो फ़ौक कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम, हर एक के ऊपर एक और ज़्यादा जानने वाला मौजूद होता है। असातिज़ा से उलमा से राबता रहेगा तो अपनी औकात सामने रहेगी, अपने से बड़ों से राबता नहीं रखेंगे तो खुद ही चौधरी बने रहेंगे सब लोगों में, और ख्याल ये होगा कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो जहाँ अपने से ऊँचे से किसी से राबता कर लेते हैं तो अपनी हैसियत का, अपने इल्म का अंदाज़ा हो जाता है कि नहीं वाकई हम तो बहुत कम जानते हैं। तकब्बुर की बीमारी जो है इंसान को तबाह कर देती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा तो वो जन्नत की खुशबू भी ना पा सकेगा, और जन्नत की खुशबू मीलों दूर से सूंघी जा सकती होगी। अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजल फरमाए, हमारी निगहदाश फरमाए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जत अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वआखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।